एकादशी का बहुत पावन दिन है, इसको हरि मासरे कहते हैं। हरि का दिन है, माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पावन करो। ये माधव तिथि है, माधव कहते हैं भगवान लक्ष्मी पति को, माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को। ये माधव तिथि है, ये भगवान से प्रेम करने की भक्ति करने की जननी है। तो आज इस एकादशी के दिन भक्ति का उद्गम स्थान भागवत, उसका आप श्रवण कर रहे हैं, ये मुख्य फल है। हमने द्वारका लीला में भगवान श्री कृष्ण के 8 तो मुख्य पटरानियों के साथ विवाह का वर्णन किया, लेकिन एक राजा भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र था लेकिन असुरों के संग में असुर हो गया, उसने 16,000 से अधिक राजकन्याओं को बंदी बना के रखा और 1,00,000 हो जाएंगे तो मैं इनके साथ शादी करूंगा, ऐसा उसका संकल्प था। आज भगवान श्री कृष्ण को उनकी रक्षा करने के लिए भौमासुर के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। सुदर्शन चक्र से भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। जब 16,000 कन्याएं वहां से मुक्त हुई तो उस जमाने का अंदाजा लगाएं तो उनको न घर में लेने के लिए तैयार था, न कोई समाज लेने के लिए तैयार था। ये बिचारी बंदी बन के वहां रही। तब कृष्ण ने पहली बार ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, उन्होंने एक क्रांति की और ये दिखाया कि अबला के ऊपर अत्याचार होता है तो उसका उसमें कोई दोष नहीं है, उसको समाज में स्वीकार करना चाहिए। और भगवान ने कहा अगर कोई नहीं स्वीकार करता है तो मैं सबको स्वीकार करता हूँ। और वो 16,000 के 16,000 द्वारका में एक एक महल बना के भगवान ने दिया और भगवान ने उनको अपने पटरानियों में शुमार किया। और नंद नारद जी ने एक दिन जाके देखा तो हर एक के साथ भगवान दिनचर्या कैसे कर रहे हैं अद्भुत, उसको देख के नारद भी आश्चर्य हो गए कि जितनी रानियां होते उतने कृष्ण, जैसे गोपियों के साथ कृष्ण बन के रास करते हैं, एक गोपी के साथ एक कृष्ण से एक रानी के पास एक कृष्ण रहते हैं। और इतनी अद्भुत दिनचर्या कृष्ण की बताइए कि सुबह उठ के पहले तो ब्राह्मणों को दान दे के बाहर निकलते ही बड़े बुजुर्गों पहले माता पिता का चरण छूने जाते थे। जब हमने ये पहली बार सुना तब से हमने ये निर्णय कर लिया कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको रोज चरण छूने जाना चाहिए। जब भगवान ने ये हमको दिनचर्या सिखाई है कि उठ के पहले बड़े बुजुर्ग जितने हैं उसका चरण छू के आशीर्वाद देना चाहिए, वो उसका बल बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, ये निश्चित रूप से करना चाहिए, ये भगवान हमको सिखा रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बच्चों के विवाह का वर्णन है, उसको हम थोड़ा सा आगे जल्दी चलते हैं। अब कथा हम करते हैं, एक समय आया बहुत इच्छा थी परीक्षा की जो कोई और कृष्ण की लीला सुनाए। तब ब्राह्मण सुधामे की लीला का वर्णन 2 अध्यायों में है और उस वर्णन में सिद्धांत ये स्थापित किया गया है कि प्रारब्ध कर्म भगवान बदल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब जो हमारे भाग्य में है वो हमको मिलेंगे ये हम मानते हैं, लेकिन भगवान भाग भी बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें। सुधामे के लिए ये लिखा है कि वो जितेंद्रिय ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण है, ऋषि है, उसका मन शांत है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है और कहीं मांगने भी नहीं जाता है। जो अपने आप आ जाए भगवान की इच्छा से उसी से निर्वाण करता है। और भगवान का सहपाठी है वो उज्जैन में भगवान के साथ शांतिपुर मुनि के पास पड़े हैं। अब एक दिन पत्नी ने कहा हमारे को कुछ और ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन 2 टाइम भोजन भी पूरा नहीं होता है। मैं दुराग्रह नहीं करती हूँ लेकिन मैं कहती हूँ आपका मित्र श्री कृष्ण यहाँ पास में है, ये पोरबंदर आगे से कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश, वो मांगने वाले को देते नहीं है, अपने आप को दे देते हैं, मुझे इतने बड़े दयालु हैं। एक बार जंगल में शंकर जी का मंदिर था, किसी की इच्छा पूरी हुई उसने एक बड़ा बड़ा घंटा वहां चढ़ा दिया पीतल का। एक चोर के मन में आया कि जंगल में देवता कौन है, जाके घंटा उतार के बेच लूंगा। तो घंटा बहुत ऊपर था, चढ़ नहीं पाया तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, चढ़ के घंटे को उतारा तब तक शंकर जी सामने खड़े हो गए। बोला भोलेनाथ जैसे गलती हो गई थी, नहीं मुझे माफ करें। बोला तो मांग तो मैं चाहिए क्या? बोला नहीं गलती, مانگ تمہیں چاہیے کیا؟ میں تم سے بہت خوش ہوں. خوش کیسے ہیں؟ تو لوگ کوئی بیل پتر چڑھاتا ہے, کوئی جل چڑھاتا ہے, تم تو اپنے آپ کو چڑھا دیا اوپر, تو اپنے آپ کو ہی چڑھا دیا اوپر, میں بہت سندر پرسن ہو گیا. تو یہ کرشن تو اپنے آپ کو ہی دے دیتے ہیں. یہ تو چلو بھر گنگا جل ہو, ایک تلسی دل ہو, تو بھگوان تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, اس کے حوالے کر دیتے ہیں. نہیں تو دیکھو اوپر ارجن بیٹھا ہے رتھ کے اوپر, اور نیچے کرشن بیٹھے گھوڑے ہاں کرے ہیں. ایسا کہاں سے بڑا ادبھت بھگوان پریم کرنا والا ملے گا جو بھکت کو اوپر بٹھا کے سوئم نیچے بیٹھ جاتا ہے, وہ نند ماما کے کھڑاؤ کو سر کے اوپر اٹھا کے لاتا ہے, کیا ادبھت. اور گوپیاں کہتی ہیں ذرا آپ ناچو, آپ کو چھاچ چلا لیں گے, تو اس کے اوپر ناچ جاتا ہے. تو یہ تو ویدوں کے اندر جو نہیں ملتا ہے, وہ نند کے آنگن میں گوپیوں کی چھاچ کے لیے تائی تائی کر کے ناچ رہا ہے, ایسا یہ برہم ادبھت. تو آج جب کہا سوشیلا سدھامے کی پتنی نے, تو سدھامے کا مانگنا تو اچت نہیں ہے, لیکن بھگوان کے درشن, ہمارے متر کے درشن کرنے کو بہت دن ہو گئے, لیکن جاؤں خالی ہاتھ کیسے؟ متر کے پاس جانا ہے تو دوارکا دیش کی خالی ہاتھ پر جاؤں, کچھ تو بھیج کے بولو, بھیج گھر میں تو ہے نہیں کچھ. چار پڑوسیوں کے گھر سے تندور چیوڑا جس کو بولتے ہیں چپ رائس, وہ ایک گھر سے چھوٹا ملا, ایک سے موٹا ملا, ایک سے سفید ملا, ایک سے پیلا ملا, تو چار رنگ کا اور چھوٹا موٹا چیوڑا ایک پوٹلی میں باندھا ہے, اس میں سدھامے کی غریبی کا پورا اتہاس لکھا ہے. اور سدھاما گھر سے نکلا ہے اور دوارکا کو دیکھ کے آشرے لیے, ہمارے کنہیا کی دوارکا ہے, بڑا خوش ہوا ہے. براہمن کو اندر جانے میں کوئی روکتا نہیں ہے. جب کرشن کے محل کے سامنے پہنچا, کرشن کی اس کے اوپر درشتی پڑی, تو کرشن بھاگتے ہوئے رکمنی کے پلنگ سے اٹھے اور سیدھے آ کے پتاما کو ایسے گلے میں بھرا, بولا متر اتنے دن تم نے آنے میں لگا دی, اور آنکھوں میں کرشن کے آنسو ہیں. سدھامے کو ایسے لے جا کے اسی پلنگ کے اوپر بٹھایا لکشمی رکمنی کے, اور نیچے سوئم بیٹھ کے برہمن کی سیوا کرنے لگے. رکمنی سونے کی جھاڑی میں پانی لائی, پاؤں دھوئے ہیں, اور پھر سب پریوار نے سدھامے کا پوجا کیا ہے. سارے پریوار نے بیٹھ کے سدھامے کو بھگوان نے اپنے وستر دیے, اسنان کیا, چھپن بھوج کھلایا. رات کو بھگوان سدھامے کے ساتھ بیٹھ کے بچپن کی باتیں کرنے لگے کہ کیسے رات کو ہم گئے تھے لکڑی لینے اور اوساد آ گئی, ہم رہ گئے جنگل میں اور ہمارے گرو جی ہم کو ڈھونڈتے آئے, اور گرو جی نے کہا بیٹا میں آپ سے بہت پرسن ہوں, میری ودیا آپ کے پاس سدا رہے گی. ایسے بچپن کی باتیں بہت ساری کرنے کے بعد دوسرے دن جب ودائی کا سمے آیا, تو بھگوان شری کرشن نے اس وقت اس کو کہا کہ یہ بڑا سنتوش اور ویدگیہ براہمن ہے, اس کو یہ مانگے گا نہیں, یہ نہیں مانگے گا, لیکن اس کی پتنی نے مانگنے کے لیے بھیجا ہے, تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو آشرت ہے اس کو تو ضرورت ہے نا, تو یہ تو نہیں مانگے گا. بھگوان ادھیر ہو گئے, بھگوان نے مانگ لیا. تو ایاچک براہمن جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھگوان پریشان ہوتا ہے. مادھویندر پوری ایسے ایاچک سادھو تھے, گوبند کنڈ میں گووردھن میں بیٹھے تین دن میں, کہیں لینے نہیں گئے. بھگوان کرشن دودھ کا لوٹا لے کے آئے, تو تین دن سے بابا آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے, یہ میری ماں نے دودھ بھیجا ہے, آپ کو کیسے پتا میں نے کھایا نہیں؟ بولے تین دن سے پانی بھرنے آتی ہے, اس لیے کہتی آپ کسی گھر تو گئے نہیں ہیں کچھ مانگنے کے لیے. اور دودھ کیا پیا ہر سماجی میں دیکھتا ہے, وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جھاڑیوں کے پیچھے میں ہوں, مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے, مجھے نکالو. اور گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے وہاں دیکھ, وہاں مادھویندر پوری نے نکالا, تو یہ شری ناتھ جی جو اس کا نام گوپال جی ہے, یہ وہاں سے گووردھن کی تلہٹی میں پرکٹ ہوئے, اور پھر کا اس کا بڑا ابھیشیک ہوا, پورا برج اس کے لیے آیا, بڑا انکوٹ ہوا. تو یہ بھگوان سوئم اس کے لیے بھوجن اٹھا کے لے آتے ہیں جو مانگنے نہیں جاتا ہے. آج سدھامے کو کرشن کہتے ہیں تم میرے لیے کیا لائے ہو, باجی نے کیا بھیجا ہے؟ آپ کو محل دیکھے, سونے کے پلنگ دیکھے, اور اپنی پوٹلی اور وہ چیوڑا دیکھ کے بیچارے کو لجا آتی ہے, اسے بغل میں دبا دیا, لیکن شری کرشن نے اس سے چھین کے وہ چیوڑا لے لیا اور لے کے کھولا اور ایک مٹھی بھر کے منہ میں ڈالا. بولا چھپن بھوگ تو ہم نے کھائے ہیں یہاں رکمنی کے, اور ماں دیوتی کا بھی بھوجن بہت کھایا ہے, لیکن تیرے چیوڑے میں بڑا رس ہے سدھاما, دوسری مٹھی بھری ہے. رکمنی نے ہاتھ کو پکڑ لیا, بولا دوارکا دیش برہمن کا اتنا کھانے کے بعد ہم کہاں رہیں گے, یہ تو سب اس کو چلا جائے گا, ہم کو بھی تو براہمن کا پرساد ملنا چاہیے. روک لیا ہے ہاتھ, وہ پرساد تو سب کو بانٹ کے دے دیا. اور سدھامے کو ودا کرنے کے سمے وہی کپڑے جس میں آیا تھا اس میں کشن نے روانہ کیا کہ کوئی ایسے نہیں کہے کہ یہ مندر مانگنے گیا تھا. اور یہ بھی کرشن نے کہا کہ یہ رتھ کے اوپر بھی نہیں بھیجوں گا کیونکہ برہمن کے چرن میری دوارکا میں پڑیں گے تو میری دوارکا کا بھاگ ہو جائے گا. اب سدھاما واپس جاتے ہوئے کہتا ہے کتنا بڑا برہمن بھگت ہے, وہ رکمنی کے پلنگ کے اوپر مجھے بٹھایا, میرے چرن ہوئے, اچھا ہوا مجھے کچھ نہیں کیا, کچھ دیتا تو میں بھوک میں پھنس جاتا تو میری بھکتی کہیں بھرست نہ ہو جائے. یہ بڑا دیالو ہے میرا یہ متر. اب جب اپنے گاؤں کے پاس آیا تو گاؤں دکھے نہیں, یہ تو بڑا بولا میں کہیں بھول کے دوارکا تو نہیں آ گیا. تب تک تو اس کی پتنی اندر سے پوجا کے لیے آ گئی, بڑا آشچریہ ہوا اور تب سمجھا کہ تم دیتے ہو لیکن چھپا کے دیتے ہو, دکھا کے نہیں دیتے ہو. کنہیا تم نے دیا تو ہے لیکن ایسا گپت دیا ہے, کون کہتا ہے کہ سدھاما غریب ہے, جس کا کرشن دھن ہے وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے. تو کرشن جب دینے کے اوپر آیا تو اس لیے کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں بھگوان کے نام کے کیرتن میں تالی بجانے سے ہاتھ کی لکیریں بدل جاتی ہیں, بھگوان کے سامنے پرنام کرنے سے ماتھے کی لکیریں بدل جاتی ہیں. تو یہ پراگ پراگ بھگوان کی بھکتی سے بدل جاتا ہے. جیون میں کئی بھکتوں کا ہم نے دیکھا ہے اور سدھا نے کہا ایسے واپس جب یہ دھن دیکھا تب کا یہ کرشن کا دیا ہوا, کرشن کی مہما سنسار کو دکھانے کے لیے ہے, میرے بھوگ کے لیے نہیں ہے. وہ تو اپنی کٹیا میں ویسے ہی بھگوان کی سیوا میں رہا لیکن دنیا کو یہ دکھایا کہ گووند کے بھکت گووند گووند اگر دینا چاہے تو اپنے بھکتوں کو کیسے دیتا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. ویسے ایسے لکھا ہے بھاگوت میں کہ بھگوان جب کسی کے اوپر بہت زیادہ پریم کرتے ہیں انوگرہ کرتے ہیں تو سب کچھ اس کا سنسار میں چھین لیتے ہیں, تو پھر اس کو سنسار سے تیاگ ہو جاتا ہے اور بھگوان ایک ہی اس کا آشرے رہ جاتا ہے. اور جب وہ بھگوان کے پورن شرم میں آتے ہیں تو بھگوان اس کو ہزار ہاتھوں سے دیتے ہیں, وہ لے بھی نہیں سکتا ہے. اور یہ شلوک پہوچلا پروپاد نے پڑھا بھاگوت میں تو 1922 میں ان کے پاس کار تھی اور شیفر ڈرائیونگ کار تھی, بہت بڑا بزنس تھا اور پھر ایک دم سب کچھ چوپٹ ہونے لگا. تو یہ شلوک بھاگوت میں پڑھا کہ بھگوان جب پریم کرتے ہیں تو سب کچھ لے لیتے ہیں, تو بولا اچھا ہوا بھگوان لگتا ہے کہ ہم کو بھگوان نے پسند کیا ہے. جب سب کچھ لے لیا تو ایک سمے میں تو سنیاس کے بعد 40 روپے ہندوستان کے لے کے مال اٹھانے والے پانی کے جہاز بھار اٹھانے والے جہاز میں امریکہ گئے اور 12 سال کے بعد ورنداون میں کہہ رہے تھے کہ لیا تب کرشن نے سب کچھ لے لیا اور آج دیا ہے تو وشو بھر میں 40 اربوں سے زیادہ کرشن کی سمپتی اس نے دے دی ہے. کوئی دنیا میں ایسا کاروبار والا ہے کہ 40 روپے سے 40 ارب روپیہ بنا لے 10 سال کے اندر, کچھ بھی نہیں کرنا پڑے. تو دینے والا تو ایسے دیتا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. اور یہ سب بھگوان کے نام میں پورے وشو کے اندر بڑے بڑے سندر مندر اور بھون بنے, گوشالا بنے. تو یہ بھگوان دیتا سب ہے. اور ایک دن پربھوپاد جی کہتے ہیں اس لیے بھگوان دے رہا ہے مجھے کیونکہ میں ایک پیسہ بھی اپنے بھوگ کے لیے نہیں استعمال کر رہا, یہ ایک پیسہ. تو یہ اس لیے بھگوان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ہزار ہاتھوں سے دے سکتا ہے. اور ویسے دیتا تو سب کو وہی ہے, ہم تو سب دنیا میں لینے والے ہیں, دینے والا ایک ہی, باقی سب مانگنے, ہم سب دنیا سب مانگتی ہوتی ہے, ایک وہی دینے والا ہے. ایک بار کہتے اکبر شکار کر گئے جنگل میں, اکیلے ہو گئے تو پیاس سے کسی کھیت میں کسان نے پانی پلایا اور سوکھی روٹی کھلا دی. تو اس نے کہا میں تو شہنشاہ ہوں, تم بھٹک گیا ہوں, آپ نے میرا جان بچایا جیون بچا لیا ہے, اب آپ کے پاس کبھی سنکٹ آئے تو میرے پاس آنا. تو ایک دن اکال ہو گیا, وہ آیا, مہاراج نے پہچان لیا, رات کو رکا, یہ تو گاؤں کا 4 بجے اٹھ گیا اور اس کے دیکھے تو شہنشاہ نماز پڑھ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, دیکھتا ہے. صبح جب ہوئی تو بولا آپ آئے ہو, آپ کی وہاں اکال ہے, آپ کی کیا سہایتا کروں. بولا مہاراج آپ تو میں آپ سے آیا ہوں لیکن آپ صبح کیا کر رہے تھے. بولا میں بھگوان سے دعا مانگ رہا ہوں, بھگوان کو پرارتھنا کر رہا تھا, بھگوان سے دعا مانگ رہا تھا. بولا ٹھیک ہے پھر میں ابھی جاتا ہوں. بولا کیوں؟ بولا جب آپ ہی بھگوان سے مانگ رہے تھے میں اس سے مانگ لوں گا, پھر آپ سے مانگ کے کیا کروں. جب آپ ہی بھگوان سے صبح صبح اٹھ کے مانگ رہے تھے
تو پھر میں آپ کے مانگ کے کیا کروں, اسی سے ڈائریکٹ جا کے مانگ لوں گا. تو آپ ہی تو مانگتے ہیں, تو ساری دنیا ہی تو مانگتی رہتی ہے, ایک دینے والا تو ایک بھگوان ہے. اور کسی کے ہاتھوں سے کوئی کرا دے تو اور بات ہے, لیکن اصل مالک لکشمی پتی تو وہ ہے, دنیا میں کوئی لکشمی پتی تو ہے. تو یہ سدھامے کے چریتر کے بعد یہ ایک بہت ادبھت لیلا آتی ہے کہ سوریہ گرہن ہوا. گرہن گرہ ہے, وہ جو راہو وہ سوریہ کو ڈھکتا ہے, سوریہ بدھی کا دیوتا ہے. ہمارے جیان کو گرہ ڈھکتے ہیں, وہ گرہ اوپر والے ڈھکے نہ ڈھکے, اس دنیا کے اندر جو ہم آگرہ کرتے ہیں اور دراگرہ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے جیان کو ڈھک دیتے ہیں, یہ گرہ ہیں ہمارے, یہ ہم کو پریشان کرتے ہیں. ایسے جب سوریہ گرہ ہوتا ہے تب سب لوگ کروکشیتر میں سمنتک پنچک نام کا ایک بہت بڑا سروور ہے, ادھر جا کے اسنان کرتے ہیں اور پھر دان کر کے اس گرہ میں. تو بھگوان شری کرشن یدوونشیوں کے ساتھ ساری رانیوں کے ساتھ کروکشیتر میں آئے, سب راجا ہر جگہ سے آئے, اور ابھی تو کورو پانڈو کا یدھ نہیں ہوا تھا. یدھ کے بعد دوسرا جب گرہن ہوا تب کروکشیتر میں جگہ نہیں تھی, اس لیے دوسرے گرہن میں بھگوان شری کرشن سدھ آشرم میں وہ گرہن کے سمے میں آئے تھے. اور وہ امبیکا ون, وہ امباجی کو پرانا امبیکا ون کہتے ہیں, وہاں امبیکا ون میں بھگوان شری کرشن نند بابا آدمی کو لے گئے تھے پوجا کرنے کے لیے, امباجی اس کو کہتے ہیں. یہ یہاں تک بھگوان وہاں گئے تھے. تو اب اس وقت ورنداون سے متھرا سے نند بابا یشودا گوپ گوپیاں سب آئے. آج شری کرشن کی اور گوپیوں کی, نند بابا کی پہلے بچوں کو گود میں لے لیا ماں یشودا نے, بول نہیں پائے کرشن ماں, انہوں کا آپس میں ملن ہوا. اس کے بعد ساری رانیوں نے دروپتی کو اپنے وواہ کا سماچار سنایا, اور اس کے بعد سارے رشی آئے. بھگوان شری کرشن نے ان رشیوں کا سواگت کیا, اور پھر وسودیو نے ان رشیوں کو کہا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے, سنسار کے بندھن سے مکت ہونا ہے. یگیا پھر رشیوں نے ایک مہان یگیا کیا, ادھر تین مہینے تک باقی سب چلے گئے, لیکن نند بابا آدی اور بھگوان شری کرشن یہ وہاں رک گئے. آخر میں گوپیوں نے کہا کرشن آپ ورنداون چلو, تو کرشن کے رتھ کو گوپیاں کھینچنے لگی. یہ رتھ یاترا کا بھاو ہے, جو جگنناتھ رتھ یاترا ہوتی ہے اس کا بھاو یہ ہے کہ کرشن جو جگنناتھ پوری کا بڑا مندر ہے اس کو دوارکا مانتے ہیں, وہاں سے کرشن باہر نکلتا ہے, جو کھینچتے ہیں وہ گوپی کے بھاو سے کھینچتے ہیں. سامنے جو دوسرا مندر ہے گنڈیچا سندراچل اس کو ورنداون مانتے ہیں, اس ورنداون میں کرشن سات دن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ رتھ یاترا کا ایک بھاو یہاں رتھ یاترا کا ہے, اور دوسرا بھاو دوارکا میں ایک دن کرشن مورچھت ہو گئے. 100 سال جب پورے ہو گئے تھے کرشن کے ورنداون سے جانے کے بعد, تو نارد آدی نے کہا کہ اب یہ سچیت ہوں گے تو اس وقت بانسری کہاں ہے مانگیں گے, گوپی کہاں ہے, رادھا کہاں ہے پوچھیں گے, اس لیے پہلے کوئی جا کے سماچار دے دے ورنداون میں کرشن آنے والے ہیں. ارے ادھم آپ جائیے, ادھو نے بولا میں جاتا ضرور, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن میں جب گیا تھا میں نے کرشن کو کہا اتنے پریم کرنے والوں کو چھوڑ کے بیٹھے چلو ادھر, بولا ایک کام کر کے پھر جاتا ہوں, کبھی نہیں گیا, میرے اوپر وشواس نہیں کریں گے. میں تو ان کا پریم دیکھ کے کہہ کے آیا تھا مجھے برج میں تم کوئی گلم لتا بنا دو, میں وہیں پوچھ رہوں گا. بلرام جی آپ چلے جاؤ, میں 2 مہینے کے لیے رہ کے آیا ہوں ورنداون میں, سب کو میں نے سنتوشت کیا, لیکن میں نے کہا کنہیا چلو بابا بلا رہا ہے, بولا یہ کام کر کے پھر چلتے ہیں, میں جاؤں گا میرے اوپر بھی وشواس نہیں کریں گے. تب سبھدرا کہتی ہے میں چلی جاؤں گا, میں نند بابا کے آنسو دور پہنچ لوں گی, میں یشودا بھیا کو منا لوں گی, میں گوپیوں کو منا لوں گی, میں جا کے بولتی ہوں کہ بھیا آ رہا ہے. اب سبھدرا جب روانہ ہو گئی تو بلرام بولا میں اکیلا تھوڑی جانے دوں گا بہن کو, آگے بلرام کا رتھ چلا, بیچ میں سبھدرا کا رتھ چلا. تب سب نے کرشن کو اٹھا کے اور رتھ کے اوپر بٹھایا, داروک نے رتھ کو چالو کیا. کرشن جیسے مورچھت ہے ایسے آج بھی جگنناتھ پوری میں جب جگنناتھ جی کو رتھ کے اوپر لاتے ہیں تو وہ پانڈی وجے کہتے ہیں, وہ پانڈی وجے جب کرتے ہیں تو 50 سے زیادہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں, اور جگنناتھ ایسے آتے ہیں جیسے بہت نشے میں ہو آدمی یا مورچھت ہو. تو کرشن کو اٹھا کے رتھ کے اوپر بٹھایا, رتھ جب انہوں نے تو سماچار دے دیا, رتھ جب ورنداون میں پہنچا سیدھا نجی من کے اندر کرشن اترتے ہیں, تو راجا رانی وہاں مورچھت پڑی ہے, کسی وقت آنکھ کھولتی ہے کسی وقت آنکھ بند ہے, اور گو 8 سخیاں بیٹھی ہیں ناک کے اوپر روئی لگا کے دیکھتی ہیں سانس لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے. اور اتنی دیر میں کرشن وہاں پہنچے, राजा रानी का ये हाल देख के कृष्ण की आंखें ऐसी खुली की खुली रह गई, हाथ ऐसे अंदर चले गए, जो जगन्नाथ का रूप है ऐसा रूप कृष्ण का हो गया। उस वक्त ललिता ने कान में कहा, राधा कृष्ण आ गया है। राधा ने आंखें खोली, राधा की और कृष्ण की दो चार आंखें हुई, और ये जगन्नाथ भगवान कैसे जगन्नाथ के रूप में आ गए, और ये रासलीला में कृष्ण को कहना पड़ गया कि गोपियां आपने जो मेरे लिए किया है, मैं ब्रह्मा जी के जीवन तक जीऊं तब भी आपका ऋण नहीं उतार सकता हूं, न पारे हम मैं नहीं उतार सकता हूं। और आज यहां भगवान ने निर्णय लिया कि गोपियों का ऋण कैसे उतारूं। एक तो ये विचार भगवान के मन में आया कि गोपियों का ऋण कैसे उतारूं, और दूसरा ये विचार आया कि राजा रानी मेरे लिए कितना कष्ट था। मैंने कभी कहा है, मैंने भगवद गीता में कि जो भक्त मुझे जिस प्रेम से पूछता है मैं उससे ऐसे व्यवहार करता हूं, तो उन्होंने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा, मैंने कब छोड़ा। तो ये राधा राम ये गोपियों की रास लीला का प्रसाद असल में कृपा, और भगवान श्री कृष्ण का ये राधा से मिलन, इन दोनों ने कृष्ण के हृदय से ऐसा भाव बिठाया कि उसने कहा गोपियों का उद्धार भी उतारना है और राधा की तरह मुझे भी संसार के अंदर से सब संबंध तोड़ के कृष्ण के लिए ही गुणगान करना है। तब वो भगवान श्री कृष्ण गौरंगा महाप्रभु चेतना के रूप में 525-30 साल पहले प्रकट हुए। वो इसके अंदर वर्णन अभी आएगा 11वें स्कंद में, नव योगेंद्र में कर भजन कहेगा। कलयुग के अंदर धर्म है नाम संकीर्तन, और भगवान कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे, मृदंग और खड़ताल लाएंगे और भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, और जो बुद्धिमान है वो इस भगवान के युग धर्म का पालन कर लेंगे। तो असल में गोपियों की रास लीला के कारण, क्योंकि उद्धार कृष्ण नहीं उतार पाए, इसलिए गौरंगा महाप्रभु आके राधा रानी के भाव में सब कुछ हमन तोड़ के 4 साल तक पूरे दक्षिण भारत में और वृंदावन तक हाथ ऊपर उठा के सब जगह गाया, हरि बोल कृष्ण 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मम, जगह जगह गाया। तो ये भागवत का अंतिम श्लोक थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और जहाँ भागवत समाप्त होती है वहां से चेतना महाप्रभु की शिक्षा शुरू होती है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ इसके बाद तो एक प्रश्न उठता है कि कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने तो कभी अपना घर नहीं बनाया, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों के पास तो धन बहुत होता है, लेकिन लक्ष्मीपति के भक्त हमेशा साधु सुदामे की तरह कुछ नहीं होता है। तब कथा बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वृकासुर एक ऐसा था, शंकर जी को प्रसन्न किया, वो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वृकासुर ने कहा क्या वरदान चाहिए, वो जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वो मर जाए। हाँ, वृकासुर को ये वरदान मिला तो उनके मन में काम भाव हुआ, और देख के पार्वती को कहा कि अभी शंकर के सबके ऊपर हाथ रखूं, ये मर जाएगा तो पार्वती को भोगूंगा। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये भगवान आगे भागे, वृकासुर पीछे भागा, अब तो ये हाथ लंबा करके भाग रहा है। भगवान विष्णु छोटे बालक के रूप में आके ब्राह्मण के कहते हैं वृकासुर को कहाँ दौड़ता हुआ जा रहा है, पागल क्यों हो गया है। बोला शंकर ने वरदान दिया है। तो क्या वरदान दिया है? बोले जिसके हर के ऊपर हाथ रखूं वो मर जाएगा। बोला भोले बाबा की बात के ऊपर विश्वास करते हो, वो दक्ष ने जब से शराब दिया है ना उसका कोई भी वरदान काम नहीं करता है, मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं आता है, अपने सर के ऊपर हाथ रख के देखो भगवान की क्या माया थी। मूर्ख ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा और मर गया, और मर गया तो पीछे में शंकर जी खड़े थे, बाहर निकल के आए। भगवान ने कहा भोलेनाथ ऐसे वरदान किसी को मत दिया करो, खुद भी परेशान हमको भी परेशान करो। ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा जी ऐसे वरदान हेणा करते थे किसी को मत दो कि मेरे को आधा शेर आधा इंसान बनना पड़े, सोच समझ के वरदान दिया करो, वरदान भी दो तो जरा सोच समझ के दिया करो। फिर कथा आती है कि सरस्वती तट के तट के ऊपर बहुत बड़ा ऋषियों का समाज इकट्ठा हुआ, कहा कि सब देव तो तीन हैं, ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और भगवान शंकर जी संहार करते हैं, लेकिन आराध्य कौन है, इसका परिचय कौन देगा, परीक्षा कौन लेगा। भृगु ऋषि ने कहा ये काम मैं करने जा रहा हूँ, भृगु ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, सिर्फ बोला भी नहीं, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि शिष्टाचार भूल गए हो, पिता को प्रणाम नहीं करते हो। भृगु यहाँ से भागा,
शंकर जी भाई है उनका। शंकर जी ने कहा आए मेरे भाई, बोले भाई मुझको बोलते हो भस्म लगी हुई है, स्नान किया है। आप तो शंकर जी को दो शब्द ऐसे थे, शंकर जी को क्रोध उठाया, उठाया त्रिशूल, बोला इस तरीके से बोलते हो हमसे। पार्वती ने रोका, एक को तो केवल शरीर से सम्मान नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, वाणी से दो शब्द कहे तो शंकर जी क्रोधित हो गए। अब गए सीधे लक्ष्मी, पांव दबा रही थी, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, सीधा जाके छाती की बरलात मारा भृगु ने। भगवान विष्णु ने पकड़ के चरण, कहते ब्राह्मण तेरा चरण कोमल, मेरी छाती वज्र जैसी, तेरे को चोट तो नहीं लगी, मैंने को तेरा स्वागत मैंने नहीं किया, मुझे क्षमा करना। रुके था, एक को वाणी से, एक को सिर्फ शरीर से अपमान किया तो क्रोधित हो गया, एक को तो वचन किया, यहाँ तो लात मारी तो भी हपाओं पकड़ के बैठ गया, बोलता मेरा पांव नरम है और तुम्हारी छाती। लक्ष्मी ने कहा हे ब्राह्मण तेरे घर में मैं नहीं आने वाली हूँ, तू गरीब ही रहेगा। उस वक्त लक्ष्मी ने शराब दिया भृगु को, तब भृगु ने कहा माँ लक्ष्मी मैं भृगु संहिता ऐसी लिखूंगा ज्योतिष की कि लक्ष्मी ब्राह्मण के चरणों में लोग फेंक के जाएंगे। और ये कथा पूरी होती है यहाँ, तब आके भृगु कहते हैं भगवान विष्णु सहनशील है, पालन करना बहुत मुश्किल है, जन्म देना आसान है मारना आसान है, पालन करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है, फिर श्रुतियां भगवान की महिमा गाती है, जैसे रात को राजा सोते हैं और सुबह जो गाने वाले आके उसको उठाते हैं, या राधा कृष्ण कुंजों में होते हैं तो उनकी सखियां उठाती हैं, ऐसे भगवान प्रलय के बाद जगाने के लिए सुरतियां उनका गान करती हैं, तब भगवान पुनः उठ के और दोबारा सृष्टि करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, लेकिन समय का अभाव है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं द्वारका नाथ की जय, रुक्मणी रुक्मणी नाथ की जय, देवकी नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, ऐसे जय घोष करके दसवां स्कंद समाप्त करता है। ग्यारहवें स्कंद में मुक्ति का वर्णन है, पांच अध्यायों में नव योगेंद्रों के द्वारा नारद जी कथा बता रहे हैं कि नव योगेंद्रों की कथा नमी महाराज को जो बताई थी वो भागवत धर्म वसुदेव भगवान के पिता को बता रहे हैं। सामान्य आदमी की मुक्ति कैसे होती है भागवत धर्म से। वैदिक धर्म में योग्यता होगी तब आप वो पूजा कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, लेकिन भागवत धर्म में हमारी योग्यता नहीं, भगवान की कृपा से उद्धार होता है। तो भागवत धर्म में नव योगेंद्र हर कवि हवि अंतरक्ष प्रबुद्ध पिपलायन कार भजन, ये एक बड़े योगेश्वर है। पहले ने पूछा, नंदी महाराज ने पहले प्रश्न ये पूछा था, पहला प्रश्न पूछा कि संसार में सबके लिए श्रेय क्या है, अच्छा क्या है सबके लिए। नंदी महाराज को कहते हैं कि पहले पता तो लगाओ कि दुख का कारण क्या है संसार में, आज अच्छा है सुख लेकिन दुख का कारण क्या है उसका तो पता लगाओ। फिर कहते दुख का कारण एक ही है, हम सब दुनिया के अंदर नाशवंत चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो कभी हमारे साथ रहने वाले नहीं है, और जो शाश्वत भगवान हृदय में उसको भूल के बैठे हुए हैं, यही दुनिया में एक दुख का कारण है। छोटी कथा याद आती है, एक राजा को चार रानियां थी, एक का नाम काया, एक का नाम कंचन, एक का नाम कामिनी और चौथी का नाम करुणा। काया के साथ तो राजा खाम ले जाए, जहाँ घूमने जाए सजाए गजाए, कंचन को देख के प्रसन्न हो जाए किसी को देखने न दे, और कामिनी से तो घूमने फिरने जाए, करुणा से कभी बात भी नहीं करे, बीमार हो गया खटिया के ऊपर मरने को पड़ा, चारों रानियां रो रही है। राजा को भय लगा, बोला काया तुम तो मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है यम ऋतु का। काया बोलती आपके साथ मैं नहीं जा सकती, मैं तो आपको हर जगह ले गया, आप क्यों नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती। अरे कंचन आपको तो किसी को देखने नहीं दिया, आप तो चलोगी। बोला पतिदेव आपके जाते ही दूसरे से दुआ कर लूंगी, मैं तो नहीं जा सकती। अब तो राजा दुखी होकर कह रहा है जिनको सारी जिंदगी सेवा की, एक भी चलने को तैयार नहीं, तो कामिनी तुम तो चलो, शमशान तक चलूंगी, उसके बाद मेरे बच्चों की पढ़ाई की किताब लेने जाना है, मैं नहीं जा सकती। अरे तीनों नहीं जा रही, राजा रो रहा है। तब करुणा कहती है मेरे से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे महाराज, किस मैं किस मुंह से पूछूं, सारे जीवन तुमसे न बात की न कभी पूछा तुमसे, तो आज मैं कैसे पूछू, नहीं पूछो तो नहीं पूछो, मैं आपको बता दिया मैं आपके साथ चलूंगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अब तो राजा चरणों में गिर गया, ये कथा हम सबकी है, पहली पत्नी हमारी ये शरीर काया है, इसको साथ लेते हैं सजाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं, हजारों ड्रेस पहनाते हैं आभूषण लगाते हैं, मृत्यु के समय हमारे घर वाले इतने होशियार है कानून के, ये कुंडल भी निकाल देते हैं, आंखों की कड़ियां भी निकाल देते, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और दूसरी कंचन धन है, तिजोरियां बंद करते हैं, किसी को देखने नहीं देते हैं, अंत समय किसी के साथ नहीं जाता है, हमारे मरते ही दूसरा उसका मालिक बनता है, दूसरी शादी हो जाती है उसकी, वो तो कहता है आपके मरते ही दूसरे के पास चला जाऊंगा, और तीसरी रिश्तेदार कामनी है, आते हैं जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक साथ जाएंगे, फिर कोई नहीं जाएगा, वो चौथा करुणा परमात्मा है, वो तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। तब यहाँ कह रहे नहीं महाराज के जो सत्य, अभी आपका घर आप अपना मानते हो, अब घर किसी को बेचते हो, आपको बुलाता है पीछे के भैया मैं यहाँ बजे छोड़ के जा रहे हो, तुमने इसको सजाया था, ये सोने का आभूषण गिर गया पीछे से, आपको कभी बुलाया कि हमें उठा लो, नहीं। तो इन जिन चीजों को हम अपना मान के बैठे हैं वो तो असल में हमको जानती भी नहीं है, और जिन संबंधियों को अपना मान के बैठे वो भी हमको पहचानते नहीं, वो हमको आत्मा करके नहीं पहचानते हैं, वो तो शरीर को पहचानते हैं, शरीर छूट जाता है तो फिर तो हमारे से कोई रिश्ता नहीं रह जाता है उनका। तो ये तब पूछा माया क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, अवतार क्या है, भगवान की पूजा कैसे की जाए। तब भगवान की पूजा का, युग युग की पूजा का वर्णन किया, सतयुग में ध्यान होता था, त्रेता में यज्ञ होता था, कल युग में हरिनाम होगा, भगवान गौरंग महाप्रभु कीर्तन करेंगे, फिर 24 अध्यायों में उद्धव गीता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं, 24 तत्व जिससे ये प्रकृति बनी हुई है उनसे मुक्ति कैसे होती है, उसमें तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है जिनसे दत्तात्रेय ने शिक्षा ग्रहण की है, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है, आकाश से व्यापकता सीखी है, जल से प्यास बुझाना सीखी है, अग्नि से सबको जलाना सीखा है, ऐसे हर एक 24 प्रकृति से हर चीज से उसने शिक्षा ग्रहण की है, इसका वर्णन है अद्भुत। और भी इतना तो पूरी भगवत गीता 3 डायमेंशन है, उसमें सतोगुण तमोगुण रजोगुण का वर्णन है, एक दो जगह पे सिर्फ चौथा डायमेंशन भगवत गीता में मिलता है, उसको कहते हैं त्रिगुण अतीत, दो जगह सिर्फ। लेकिन उद्धव गीता 4 डायमेंशन है, इसमें 3 गुणों के बाद जो 3 गुण से परे निर्गुण है या त्रिगुण अतीत है उसको कैसे पहचाना जाए, इसका स्पेशल वर्णन है। एक सिर्फ श्लोक सैंपल आपको बताता हूं, सतोगुण का व्यक्ति नदी के किनारे पहाड़ की तलहटी में एकांत में रहना पसंद करता है, रजोगुण का व्यक्ति बाजार के अंदर मार्केट के अंदर अपना दुकान खोलना चाहता है क्योंकि लाभ कहां से होगा, तमोगुण का व्यक्ति नशेयों के पाड़े में रहेगा इसी उसी महले में जहां उसको हर चीज आसानी से मिले, लेकिन तीनों गुणों से जो ऊपर होता है भगवान कहते हैं मम निकेतनम निर्गुणा, जो तीनों गुणों से ऊपर है वो मेरे घर में रहता है, भगवान का मंदिर भगवान का घर है, वो कहते हैं मेरे मंदिर में रहता है या अपने घर में मेरा मंदिर बना लेता है। तो ऐसे हर एक चीज त्रिगुण अतीत करके भगवान ने इसमें बताया है। फिर अंतिम अध्याय में यदुवंश के संहार का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का वर्णन है, ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर वशिष्ठ आदि को भगवान श्री कृष्ण के पास आके कहते हैं जिस काम के लिए आपको अवतार के लिए प्रार्थना की थी वो काम पूरा हो गया, धरती का भार उतर गया, अब आप अपने स्वधाम जा सकते हैं। और ऋषि यहाँ से गए और ऋषि यहाँ से पिंडरिक स्थान है द्वारका में वहां गए स्नान करने के लिए, वहां भगवान श्री कृष्ण के बच्चे सांबा जो बहुत सुंदर है जामवती का पुत्र उसको साड़ी पहना के पेट में कपड़ा डाला और कहते हैं महाराज इसका जरा देख के बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी। बोला अरे कृष्ण के बच्चे होके भी मजाक करते हो संतों से, जाओ जाओ ये तुम बच्चे हमारे। बोला महाराज आपको पता नहीं लगता, ये तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है, आप इतने तपस्वी इतना भी नहीं बता सकते हो आधुनिक भाषा में। ऋषि को क्रोध आ गया, बोला इसके तो पेट से निकलेगा मूसल और यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। डर गए बच्चों ने खोला तो इतना बड़ा लोहे का मूसल निकला, कृष्ण को बताया नहीं, उग्रसेन ने कहा इसको पीस के समुद्र में डाल दो, समुद्र से एक टुकड़ा भी उसमें रह गया, भगवान को बताया नहीं। और समय ऐसा आया कि ये शाप लग गया जब हो तो सबने कहा द्वारका में नहीं चलो, चलो प्रभात में चले सांप से बचने के लिए। अरे भगवान के धाम का कोई वे, भगवान के धाम में सांप तो नारद को भी नहीं लगता था, 3 दिन क्या वो 3 महीने रह जाता था। आज जब प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी गए हैं तो वहां उन्होंने वारुणी की है, वो चावल जो पड़ा था दो दिन पानी में उसको पिया, और पिया तो उस पानी पीने के साथ सबको नशा हुआ और फिर एक दूसरे को लड़ने लगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, हस्त्र शस्त्र समाप्त हुए। तो वो जो चूर्ण करके डाला था लोहा समुद्र में, वो एक घास बाहर निकला, उस घास को उठा के जिसको लगाए उसका गर्दन कटे। कृष्ण बलराम रोके तो रोकने से रुके नहीं, ये प्रलय क्षेत्र भोलेनाथ का है। उधर ये यदुवंशी आपस में सब लड़के मरे, भगवान ने उसके बाद बलराम जी को वहाँ ध्यान में बैठ के पाताल में शेष चले गए। वो स्थान अभी द्वारका में है जहाँ से बाल पाताल में बलराम जी गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटे से वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। वो वट वृक्ष सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है जिसमें हम रहते हैं, वहाँ बैठे, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव है, और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। उस वक्त उनके पांव के लालाई को देखकर दूर बैठा हुआ एक बहेलिया जिसको जरा कहते हैं, वैसे जरा बुढ़ापे का नाम भी है, लेकिन ये जरा वो भृगु लाभ के मार के आया था, वो जरा बना था, और उस जरा ने वहां से उसको मृग समझ के बाण चलाया। बाण तो भगवान के चरण के पास आया, उससे पहले वो बहेलिया कहता है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने हिरण का मुंह समझ लिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारा इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम तो मुझसे पहले मेरे धाम जाओ, ये मेरी इच्छा थी। अब ये बात हो रही है तो उस वक्त में उद्धव को गीता सुना चुके भगवान, द्वार को उठा तुम जाके बता दो सबको द्वारका में ये सब बातें। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से स्वधाम अपने चले गए। और यहाँ 11वां स्कंद समाप्ति पे आता है। पद्म पुराण में तो ऐसे लिखा है कि भगवान ने अपने शरीर को यहाँ समुन्द्र में डाल दिया, वो शरीर चलता हुआ जगन्नाथपुरी में पहुंचा, जिसको निकालकर पूजा करने लगे वहाँ के जो लोग हैं। फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ के रूप में उनको वहाँ स्थापित किया। पद्म पुराण तो ऐसे कहती है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से समुन्द्र के मार्ग से जगन्नाथपुरी में। इसलिए ये मान्यता है कि गंगा तो 5,000 साल तक पति तपावनी के रूप में लोगों का उद्धार करेगी। आज 5 साल पूरे हो गए हैं कलयुग में, अब गंगा सिर्फ टूरिज्म वाला जैसा हो गया है। कल हमने आपको कथा बताई थी नल कुबेर और मणिग्रीव की, गंगा के अंदर लड़कियों के साथ नाच रहे थे। अभी आप ऋषिकेश से 40 किलोमीटर ऊपर जाके देखो, हजारों के हिसाब से लोग अंदर नल कुबेर और मणिग्रीव से भी ज्यादा बदमाश पड़े होते हैं उस गंगा के अंदर बीच में, और लड़के और लड़कियां और मांस, ये गंगा के अंदर अपराध आज हो रहा है। तो अब गंगा में पति तपावनी वाला प्रभाव कम हुआ। जगन्नाथ भगवान 10,000 साल तक कलयुग में पति तपावन के रूप में रहेंगे। आज तक भी जगन्नाथपुरी के अंदर जो भाव है, नयन है, वो वैसे के वैसे, ये प्रमाण शास्त्र का है। यहाँ 11वां स्कंद समाप्त होता है। 12वां स्कंद उसको कहते हैं निरोध लीला, इसका मतलब सब कुछ आदमी भूल जाता है। 13 अध्याय का छोटा स्कंद है, पहले कलयुग के राजाओं का वर्णन है और वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य तक का वर्णन है, और कौटिल्या, कौटिल्या का मतलब जो हमारे बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए हैं, कौन, चाणक्य तक का वर्णन है। और उस इतने सारे राजा आए और गए, ये सिर्फ इसलिए है कि दुनिया में कोई स्तर रह नहीं सकता। उसके बाद कलयुग का वर्णन है भूमि गीता के रूप में, कि कलयुग कैसा प्रभाव अपना दिखाएगा संसार के अंदर। उस कलयुग के वर्णन के अंदर परीक्षित महाराज को बहुत पीड़ा होने लगी कि ये मेरी प्रजा कलयुग में पीड़ित हो जाएगी, इनके उद्धार का कोई साधन है क्या महाराज? सुखदेव महाराज कहते हैं अस्ति एको महागुण, कलयुग में एक गुण है। जैसे कलयुग का अर्थ है कल है, कलयुग का मतलब कल है, भाई भाई में कल है, स्त्री पुरुष में कल है, पड़ोसियों में कल है, जहाँ झगड़ा हो उसको कलयुग कहते हैं। लेकिन कलयुग का एक दूसरा अर्थ है केशव लयिते इति कलि, जो बहुत सरलता से भगवान केशव को लाके दे दे, केवल एक भगवान के नाम के उच्चारण से, एक ये कलयुग का महागुण है। जब कहा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, कलेर दोषे निजे राजन, ये कलयुग तो दोषों का सागर है, परीक्षित ने सागर को कोई कैसे पार कर सकता है? सागर में तो तैरने के लिए नाव चाहिए, अपने आप कोई पार नहीं कर। अस्ति एको महागुण, एक बड़ा महागुण, बोल जल्दी बोलिए, मैं राजा हूँ, मैं इसका पालन करूंगा तो मेरी प्रजा पालन करेगी तो हमका उद्धार हो जाएगा। तब सरस्वती भगवान सुखदेव के मुख के ऊपर, जबान के ऊपर आके बैठी और सुखदेव के मुख से ये शब्द निकले, कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेता। कृष्ण कीर्तन कृष्ण से सीधा शब्द निकला, कृष्ण का कीर्तन, न हरि शब्द निकला, न भगवान निकला, न परमात्मा निकला, कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग संसार के बंधन से मुक्त करेगा। ये जेल से कोई मुक्त हो जाए और बाहर कहीं जाने की जगह नहीं हो तो किसी काम की मुक्ति थोड़ी है। परम वर्जेत मुक्त करने के बाद हाथ से पकड़ के ब्रज धाम अपने गोलोक धाम ले जाएगा, परम ब्रजेत का ही अर्थ है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं नित्य भवानी निचरात पारत मई आवेश चेतसाम, जिसका मन मुझ में आविष्ट होता है तत्काल उसको मैं उठा के भव सागर से पार कर लेता हूँ, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं। मैं उसकी नौका चलाता हूँ, वो मेरा दर्शन करता रहता है, उसका पानी में पांव भी भीगने नहीं देता हूँ। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अब तक शक आए या कोई और रूप में कुछ आए, ये शरीर तो वैसे भी क्षण भंगर है, तुम्हारे माध्यम से भागवत भगवान को देनी थी, वो मैंने पढ़ के तुमको समझा दी, अब तुम भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में बैठ जाओ। इसके बाद सूत का और सौनक का संवाद है, एक वेद चार वेदों में कैसे हुए इसका वर्णन है, पुराण कैसे कैसे है इसका है, भागवत पुराण में कितने श्लोक है इसका वर्णन है, और फिर मार्कंड्य ऋषि का वर्णन है कि मार्कंड्य ऋषि ने कलयुग देखना चाहा नरनारायण ऋषि से, और उस कलयुग के अंदर मार्कंड्य ने भगवान एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर छोटे बालक को अपने पांव का अंगूठा मुख में देखा, वटस्य पत्र से पूटे श्यानम बालम मुकंदम मनसा, वो मुकंद को देखा और उसके सांस के साथ पेट में चले गए और फिर अपने आश्रम में आए। और फिर शंकर जी ने एक दिन उनको कहा तुम्हें वर कुछ चाहिए क्या, मार्कंडे बोला एक बार वर मांग के प्रलय देखिए अब कुछ नहीं देखना है, बोला फिर भी मैं तुम्हें वरदान एक में तीन देता हूँ, पहला तुम्हें साधुओं का संग रहेगा सदाई, संसार से तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी बड़ी आयु हो रहेगी, तो मार्कंडे ब्रह्मा के तीन दिन से ज्यादा जीते हैं। और उसके बाद भागवत की महिमा आती है, जैसे उसमें लिखा है तीन श्लोक अंतिम दो श्लोक पढ़ के हम भागवत की पूर्णाहुति यहाँ करने जा रहे हैं। पहले लिखा है गणानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा पूजनीय है, दे आम वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे सब भगवान विष्णु के उपासना में भगवान शंकर जी है, तथा पुराण देवानाम यथा अच्युतो, जैसे सारे देवताओं में अच्युत आराध्य, भगवत गीता शुरू अच्युत शब्द से होती है और भगवत गीता की पूर्णा होती है अच्युत शब्द से होती है, रसम में अच्युत से शुरू होता है, नष्टो मोह स्मृति लम्बुआ तब प्रसादाम अच्युत, अच्युत से समाप्त होती है। और फिर ये दो श्लोक आप मेरे पीछे कहें तो आपको पूर्ण भागवत के श्रवण का फल मिलेगा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तव जायते, भगवान हम जहाँ भी रहें आपके चरणों की भक्ति हमें मिलती रहे। आगे तथा पुरुषवा देवेश नाथ त्वं नो यत प्रभु, हे प्रभु आपके अलावा और कोई मेरा नाथ नहीं है और हर समय मेरे ऊपर ये कृपा करो। अब ये अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यज्ञ सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम साथ बैठ के गाना सारे पापों को नाश कर देता है। संकीर्तन से भागवत पूरी होती है और संकीर्तन से चैतन्य चैतन्य शुरू होती है, जहाँ ये समाप्त होती है वहां से वो शुरू होती है, नाम संकीर्तन के लिए यहाँ ये समाप्त। दूसरी लाइन संकीर्तन का मतलब साथ मिलकर भगवान का नाम का गुणगान करना सारे पापों को नाश करता है, लेकिन पापों का फल दुख होता है, दुख कैसे नाश होता है, दूसरा लाइन का कल्प है प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम, ये परम हरि हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि उससे दुख नाश हो जाते हैं। तो दो बातें हैं, प्रणाम करने से पाप का फल दुख नाश होता है और संकीर्तन करने से पाप नाश होता है। तो यहाँ भागवत संकीर्तन और प्रणाम के साथ नमस्कार के साथ सबके दुख को और पाप को नाश करने का और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का साधन है। अब तो हम अपने संस्था के यहाँ जो भक्त ये सेवा का कार्य आप सबकी सेवा के लिए उपस्थित किया है उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमको ये सेवा का अवसर दिया और 7 दिन से
आप भी बड़े श्रद्धा के साथ उत्साह हमारा बढ़ाया तथा करने के लिए प्रेरणा दी, आप सबका धन्यवाद करते हैं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की प्रभुपाद की।